लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको प्रभु ईश्वर का आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि अपनी अस्मिता और अस्तित्व के खो जाने का खतरा उठा रहे देशज लोगों के प्रति सम्मान प्रदर्शित किया जाए। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। श्रोताओं, पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल के प्राचीन व्यवस्थान के स्तोत्र ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। इन भजनों में विभिन्न ऐतिहासिक और धार्मिक विषयों को प्रस्तुत किया गया है। कुछ भजन प्राचीन इसराइलियों के इतिहास का वर्णन करते हैं, तो कुछ में ईश कीर्तन, सृष्टिकर्ता ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापन और पापों के लिए क्षमा याचना के गीत निहित हैं। इन भजनों में मानव की दीनता और दयनीय दशा का स्मरण कर करुणावान ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि वे कठिनाइयों को सहन करने का साहस दें और सभी बाधाओं और अड़चनों को जीवन से दूर रखें। ईश्वर, तूने क्यों हमें सदा के लिए त्याग दिया है? तेरा क्रोध क्यों अपनी चरागाह की भीड़ों पर बना हुआ है? अपनी प्रजा को याद कर, जिसे तूने प्राचीन काल में अर्जित किया, जिसका तूने उद्धार किया, उस वंश को जिसे तूने विरासत के रूप में अपनाया था, सियों के पर्वत को जिसे तूने अपना निवास स्थान बनाया था। इन पुराने खंडहरों पर दया दृष्टि कर। शत्रु ने पवित्र मंदिर को उजाड़ दिया, तेरे बैरियों ने तेरे प्रार्थना गृह में शोर मचाया और वहां अपने विजयी झंडे फहराए। श्रोताओ, ये थे स्तोत्र ग्रंथ के 74वें भजन के प्रथम चार पद। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत विगत सप्ताह हमने इस भजन की भूमिका आपके समक्ष रखी थी, जिसमें भक्त समुदाय राजा नबूखदनज़र के शासनकाल में जेरूसलम के मंदिर के विनाश पर विलाप करता है। ईसा मसीह के आगमन से लगभग 5 शताब्दियों पूर्व ईश्वर द्वारा चुने गए जेरूसलम शहर का मंदिर नष्ट कर दिया गया था। इस तथ्य की ओर हमने आपका ध्यान आकर्षित कराया था कि इजरायली जाति के लिए जेरूसलम शहर उसका संदर्भ बिंदु था। ईश प्रतिज्ञा के अनुसार जेरूसलम शहर ही राष्ट्रों के मिलन बिंदु और ईश प्रजा के प्रतिज्ञात शहर रूप में चुना गया था। यही था वह शहर जहां ईश्वरीय मुक्ति योजना की प्रमुख घटनाएं घटी। 74वें भजन के प्रथम चार पदों में ईश प्रजा ईश्वर की प्रतिज्ञा को याद करती है, जिसमें प्रभु कहते हैं, मैंने आकाश को स्थापित किया, पृथ्वी की नींव डाली और सियों से कहा, तुम ही मेरी प्रजा हो। वह विलाप करते हुए प्रभु ईश्वर को पुकारती है। प्रथम 3 पदों में ईश प्रजा विलाप ही नहीं शिकायत भी करती है। क्रुद्ध होते हुए कहती है, तूने क्यों हमें सदा के लिए त्याग दिया है? तेरा क्रोध क्यों अपनी चरागाह की भीड़ों पर बना हुआ है? वह मानो प्रश्न करते हुए कहती है, ईश्वर क्यों अपने शहर को अविश्वासी सेना द्वारा नष्ट होने देते हैं? प्रभु ईश्वर ने अपने लोगों के साथ हुई संविदा को क्यों भुला दिया है?
मुद्दतों से है हमारी आस तुझ पर लग रही, मुद्दतों से है हमारी
वसुधा श्रोताओ, ईश प्रजा के इस विलाप से स्पष्ट है कि उस दिन बुराई की विजय हुई थी। प्रभु ईश्वर ने जिस शहर और जिस मंदिर को अपना घोषित किया था उस पर प्रहार किया गया था। बुराई ने इतिहास में कदम रख लिया था, जिसे अभिभूत करने के लिए पिता ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस धरा पर भेजा। संत मरकुस रचित सुसमाचार के 13वें अध्याय के 14वें पद के अनुसार प्रभु येसु ख्रीस्त स्वयं महासंकट के विषय में कहते हैं, जब तुम लोग उजाड़ का विभत्स दृश्य देखोगे जहां उसका होना उचित नहीं है, पढ़ने वाला समझ ले, तो जो लोग यहूदिया में हों वे पहाड़ों पर भाग जाएं। और फिर कहते हैं, प्रार्थना करो कि यह सब जाड़े के समय घटित नहीं हो, क्योंकि उस समय वैसा घोर संकट होगा जैसा ईश्वर की सृष्टि में इस संसार के प्रारंभ से अब तक न कभी हुआ है और न कभी होगा। बाइबल विशेषज्ञों के अनुसार प्रभु येसु ख्रीस्त 6 दिसंबर 167 ईसा पूर्व की घटना के संदर्भ में बोल रहे थे, जब विदेशी राजा अंतियोकुस ने दूसरे मंदिर के पुनर्निर्माण के अवसर पर बुत परस्ती का घृणित बलिदान अर्पित किया था। यह इसलिए क्योंकि प्रभु येसु ख्रीस्त जानते थे कि बुराई के विरुद्ध संघर्ष अनंत काल तक जारी रहने वाला संघर्ष है। अस्तु येसु ख्रीस्त पवित्र शहर के उस विनाश को इंगित कर रहे थे जो उनके आगमन के बाद होने वाला था। वस्तुतः रोमी शासकों ने सन 70 ईस्वी में जेरूसलम को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया था और उसके मंदिर को अपवित्र कर दिया था। इसके अतिरिक्त श्रोताओं, बाइबल विशेषज्ञों के अनुसार प्रभु येसु ख्रीस्त बुराई के विरुद्ध अनंत युद्ध के उस विभत्स प्रदर्शन का भी संदर्भ दे रहे थे जो गोलगाथा पर संपादित हुआ था और जिसमें मनुष्य की सारी हैवानियत प्रकट हो गई थी। संत लुकस रचित सुसमाचार के 22वें अध्याय के 53वें पद के अनुसार गेत्सेमनी की बारी में उन्हें गिरफ्तार करने पहुंचे महायाजक और मंदिर आरक्षियों से प्रभु येसु ख्रीस्त कहते हैं, मैं प्रतिदिन मंदिर में तुम्हारे साथ रहा और तुमने मुझ पर हाथ नहीं डाला, परंतु यह समय तुम्हारा है, अब अंधकार का बोल बाला है। इससे यही स्पष्ट है कि अच्छाई और भलाई के साथ साथ सदैव बुराई का भी अस्तित्व रहा करता है, जिसके प्रति हम सबको प्रतिपल सतर्क रहना होगा। प्राचीन काल में भी ऐसा था, आज भी है और भविष्य में भी यही सिलसिला जारी रहेगा। आगे स्तोत्र ग्रंथ के 74वें भजन के 5 से लेकर 8 तक के पदों में भी मंदिर के विनाश का भयंकर दृश्य देखने को मिलता है, जिसमें ईश विरोधी दुष्ट घृणा का बीभत्स प्रदर्शन कर जानबूझकर ईश्वर के पवित्र नाम को अपवित्र करने का दुस्साहस करते हैं। ये पद इस प्रकार हैं, ऐसा लगा कि वे कुल्हाड़ी घुमाकर झाड़ झंकार काट रहे हैं। उन्होंने कुल्हाड़ियों और हथौड़ों से मंदिर के सभी उत्कीर्ण द्वार टुकड़े टुकड़े कर दिए। उन्होंने तेरे मंदिर में आग लगाई, तेरे नाम का निवास स्थान ढाकर दूषित कर दिया। उन्होंने अपने मन में कहा, हम उनका सर्वनाश करें, हम देश भर के सब सभागृह जला दें। श्रोताओं, यह पाश्विक विनाश पवित्र स्थल पर हुआ, उस स्थल पर जो स्वयं सर्वोच्च प्रभु और न्यायप्रिय ईश्वर का पवित्रतम स्थान था। प्राचीन व्यवस्थान में कई स्थलों पर प्रभु को पवित्र नाम से पुकारा गया है। 99वें भजन में हम पढ़ते हैं, प्रभु सियों में महान है, वह सब राष्ट्रों से ऊंचा है, वे उसके विराट और श्रद्धेय नाम का गुणगान करें। हमारा प्रभु ईश्वर पवित्र है।
वंदे प्रभु, वंदे मसीह, शात शात वंदना, वंदे। रात को अर्पण करते हैं इस जीवन को, वचनामृत दे दे शरणागत को।